स्वागतम् अस्तु मित्रगणाः, एषः रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चः अस्ति। अहं लीना मेहेन्दळे अस्माकं पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य प्रस्तुतिं करोमि। गतरविवासरे वयं महाभारतस्य रचना इति बालनाटिकायाः द्वितीयः अंशः श्रुतवान्। अद्य तृतीयः अंशः कथयिष्यामि। अर्थात् मित्रगण, स्वागत है। यह रेडियो मधुबन का श्राव्य मंच है और मैं लीना मेहेन्दळे हमारे कार्यक्रम पठामि संस्कृतम की प्रस्तुति कर रही हूँ। पिछले रविवार को हमने महाभारतस्य रचना इस बाल नाटिका का दूसरा अंश सुना और आज मैं आगे तीसरा अंश कहूंगी। वयम श्रुतवान यत व्यासस्य अनुरोधम स्वीकृत्वा श्री गणेशः आगच्छति। व्यासः तम महाभारत ग्रंथ लेखनं कर्तुं प्रार्थयति। तदनन्तरं श्री गणेशः किं करोति? हमने सुना कि व्यास के अनुरोध को स्वीकार करके श्री गणेश आते हैं और व्यास उन्हें महाभारत ग्रंथ लेखन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो तत्पश्चात गणेश क्या करते हैं? तो हमने सुना कि गणेश अपने मूषक को किस प्रकार बताते हैं कि उन्होंने व्यास के साथ क्या युक्ति की। गणेशः कथयति, हा हा, मया एका युक्तिः कृता। मया उक्तं मम लेखनी मध्ये स्थगिता न भवेत्, तावत् शीघ्रगत्या श्लोककथनं करणीयं भवेत्। यदि श्लोकरचनां कर्तुं चिन्तनं कर्तुं भवान् मध्ये स्थगनं करोति, तदा मम लेखनी अपि स्थगिता भविष्यति, ततः अग्रे अहं न लिखामि। अर्थात मैंने एक युक्ति की, मैंने कहा कि मेरी लेखनी बीच में नहीं रुकनी चाहिए, मध्य स्थगिता न भवेत, मेरी लेखनी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। तावत शीघ्र गत्या श्लोक कथनम करणीयम, इतनी शीघ्रता से आपको श्लोक का कथन करना पड़ेगा। यदि श्लोक रचना करने के लिए या चिंतन करने के लिए भवान मध्य स्थगनम करोति, आप बीच में ही रुक जाएंगे, तदा मम लेखनी अपि स्थगिता भविष्यति, तब मेरी भी लेखनी रुक जाएगी और ततः अग्रे अहम् न लिखामि, उसके आगे मैं नहीं लिखूंगा। इसके बाद गणेश मूषक को आगे बताते हैं, परंतु मूषक महर्षि व्यासः अपि बुद्धिमान अस्ति, महर्षि व्यास भी बुद्धिमान हैं। तो महर्षि व्यास की बुद्धिमत्ता कैसे समझ में आती है उसे हम सुनेंगे। गणेश जी ने यह जो एक समस्या रखी थी उसके उत्तर में व्यास ने क्या कहा, इसे व्यास वैशंपायन को बताते हैं। अब नाटक का यह प्रसंग हम देखते हैं। वैशंपायन कथयति, गुरुवर्य, एषा उत्तमा वार्ता यत् स्वयं श्री गणेशः भवतः महाकाव्यम लिपिबद्धं कुर्वन् अस्ति। गुरुवर्य, यह तो बहुत ही उत्तम वार्ता है कि स्वयं श्री गणेश आपके महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। आसनादि अन्य सर्व व्यवस्थाम अहम् सत्वरम करिष्यामि, उनके बैठने के लिए आसन और अन्य सारी सुविधा, सारी व्यवस्था मैं सत्वर करता हूँ। परम श्री गणेशः एतावत् सरलतया अंगीकृतवान् एतत् आश्चर्यम् एव, परंतु श्री गणेश ने इतनी सरलता से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके इस काम को अंगीकार किया, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। व्यासः विहस्य कथयति, न न वत्स, ब्रह्मदेवेन सत्यमेव कथितम्। व्यास हंस करके बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटे वैशंपायन, ब्रह्मदेव ने सही कहा था, सत्यमेव कथितम्। श्री गणेशस्य स्वस्य बुद्धिमत्ताम् तथा शिव पार्वत्योः स्नेहः एतेन कारणेन विद्वज्जनानां विषये आदरं भूत्वा अपि तेषां परीक्षणे एव श्रीगणेशः सर्वदा आनन्दम् अनुभवति। श्रीगणेश की स्वयं की बुद्धिमत्ता तथा शिव और पार्वती के स्नेह के कारण, लाड़ के कारण, विद्वज्जनों के विषय में बहुत आदर रखते हुए भी उनकी परीक्षा लेने में श्रीगणेशः सर्वदा आनन्दम् अनुभवति, श्री गणेश को सर्वदा आनंद अनुभव होता है। मम पुरतः अपि सः एका युक्तिः अकुर्वन्, मेरे लिए भी उन्होंने एक युक्ति की, एक समस्या मेरे सामने रखी। का सा युक्तिः? यत् तस्य लेखनी स्थगिता न भवेत् तावत् शीघ्रतया श्लोक कथनम् भवेत् इति। क्या है वह युक्ति? कि उसकी लेखनी, गणेश की लेखनी स्थगित ना हो, रुके नहीं, इतनी शीघ्रता से मुझे श्लोक रचना करनी पड़ेगी। वैशंपायनः अपि हसित्वा कथयति, ब्रह्मदेवेन सत्यं कथितम्, गणेशः किमपि चेष्टाम् अवश्यं कुर्यात् इति। इदानीं भवान् किं करिष्यति गुरुवर्य? तो वैशंपायन भी हंस के कहता है कि ब्रह्मदेव ने सही कहा था कि गणेश जी कोई न कोई चेष्टा, कोई न कोई कौतुक अवश्य करेंगे। तो अब इदानीं अब भवान किम करिष्यति गुरुवर्य? तो अब गुरुवर्य आप क्या करने वाले हैं? व्यासः कथयति, मया अपि युक्तिः कृता, मैंने भी एक युक्ति की। अहम् उक्तवान् यावत् भवान् मम श्लोकस्य गूढार्थं न जानाति, न अवगच्छति, तावत् श्लोकं न लिखति। मैंने श्री गणेश से कहा कि जब तक आप मेरे श्लोक के गूढ़ अर्थ को नहीं जान लें, नहीं समझ लें, तब तक आप श्लोक नहीं लिखेंगे। इदानीम् अहम् एतादृश गूढ़ श्लोकानां रचनां करोमि, तस्य अर्थावगमने गणेशस्य समयः गच्छेत्, तावता कालेन अहम् अग्रिम श्लोकानां चिंतनं कर्तुं समयं प्राप्नोमि। तो अब मैं इस प्रकार थोड़े से गूढ़ श्लोकों की रचना करूंगा, तस्य अर्थावगमने, उसका अर्थ समझने में गणेशस्य समयः गच्छेत्, गणेश को समय लग जाएगा, तावता कालेन अहम् अग्रिम श्लोकानां चिंतनं कर्तुं समयं प्राप्नोमि। तावता कालेन, उतने समय में अहम् अग्रिम श्लोकानां चिंतनं कर्तुं समयं प्राप्नोमि, मुझे अगले श्लोक के विषय में सोचने के लिए समय मिल जाएगा। तो इस प्रकार व्यास ने भी युक्ति की और श्री गणेश ने जो शर्त रखी थी उसके अनुकूल अपनी भी एक शर्त रख दी। तो नाटक के समारोप में ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेवः कथयति, अथ एतादृशं महर्षि व्यासेन जय नामक इतिहास ग्रंथः रचितः। तो इस प्रकार महर्षि व्यास ने जय नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। सः एव ग्रंथः महाभारत नामना विख्यातः अभवत्, यही ग्रंथ महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। अस्य लेखनम् श्री गणेशेन कृतम्, तथा अस्मिन् संसारे लेखन कलायाः निर्मिति कृता। जय श्री गणेश। तो इसका लेखन श्री गणेश ने किया और इस प्रकार संसार में, अस्मिन् संसारे, इस संसार में लेखन कलायाः निर्मिति कृता, लेखन कला की निर्मिति की, अर्थात लोगों को लेखन कला के प्रति आकर्षित किया और लोगों को लेखन कला सिखाई, या उनसे प्रेरणा लेकर के लोग लेखन कला में पारंगत होने लगे, लेखन कला सीखने लगे। तो इसलिए हम कहेंगे जय श्री गणेश और जय श्री व्यास भी कहेंगे। और स्वयं श्री व्यास ने महाभारत के आरंभ में जो पहला श्लोक लिखा है उसका भी एक बार स्मरण कर लेते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अर्थात सबसे पहले हम नारायण ऋषि को नमस्कार करें और फिर उनके भाई जो ऋषि थे और जिनका नाम नर था और वही नरोत्तम भी कहलाए कभी कभी, उनको भी नमस्कार करके और देवी सरस्वतीं व्यासम, और सरस्वती देवी को नमस्कार करके और व्यास को नमस्कार करके ततो जयम् उदीरयेत्, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को इस जय ग्रंथ का आगे पाठ करना चाहिए। और यहाँ जो संकेत दिया गया है नारायण ऋषि और नर ऋषि, तो ऐसी मान्यता है कि यही दोनों ऋषि थे जिन्होंने आगे चल करके श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया और महाभारत में जो सर्वश्रेष्ठ अंश माना जाता है भगवद गीता, वह भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का पूरा वर्णन, उस ज्ञान का पूरा प्रबोधन इस भगवद गीता में है। पहले भी उसमें से कुछ कुछ अध्याय हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तुम पढ़ते रहना संस्कृत, सुनते रहो पठामी संस्कृतम कार्यक्रम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।